ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथानुतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखानितांश। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले हीमते भक्तिवेदान्त स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आप सभी को आज के इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज एक बहुत ही पवित्र दिन है हम गौड़ीय वैष्णवों के लिए। एक महान आचार्य नित्यानंद के पार्षद अभिराम ठाकुर का तिरोभाव दिन है। संक्षेप में थोड़ा सा हम गुणगान करेंगे, तत्पश्चात श्रीमद् भागवतम के श्लोक के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो इस कलयुग में सभी जीवों को उद्धार करने के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए और उनके बड़े भाई बलराम श्री नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हुए। जब भगवान इस धरती पे प्रकट होते हैं उनके साथ उनके सारे पार्षद भी आते हैं, और कोई तो उनसे पहले, कोई उनके बाद, और कोई उनके समकालीन, ऐसे अलग अलग समय में वो स्थान में भी अलग अलग स्थान में वो प्रकट होते हैं। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु जब संकीर्तन आंदोलन प्रचार शुरू किए नदिया नवदीप में, तो एक बार नित्यानंद प्रभु को बोले, हे निताय, मैं मेरा एक भक्त, मेरा एक पार्षद को मैं बहुत याद करता हूँ, उनको आना जरूरी है। अगर वो हमारे मिशन में, हमारे आंदोलन में, हमारे संकीर्तन आंदोलन में आएंगे हमारे साथ, तो संकीर्तन आंदोलन का और जोर प्रचार होगा, बहुत प्रचार होगा। तो नित्यानंद को पूछे, कौन है जिनको आप इतना याद करते हैं? तो महाप्रभु ने कहा कि वो पार्षद गोवर्धन में है, आपके यहाँ वृंदावन में ये बात हो रही है नदिया नवदीप में, लेकिन महाप्रभु याद कर रहे हैं गोवर्धन को। वो पार्षद गोवर्धन में है, और अभी से नहीं, कब से, जब से मैं कृष्ण लीला का संवरण करके मैं अपने गोलोक धाम पधार चुका हूँ, उसके तभी से वो वो पार्षद वहाँ है, इसलिए मैं कह चाहता हूँ कि तुम जाओ और उनको बुला के लाओ कि कृष्ण अवतरित हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए हैं। तो नित्यानंद प्रभु उनके कहने पर फिर गोवर्धन आते हैं और गोवर्धन में वो परिक्रमा करते हैं। उसके बाद वो पुकारते हैं श्रीदाम श्रीदामा श्रीदामा ऐसे कह के पुकारते हैं। ये भगवान के प्रमुख द्वादश सखा जो हैं, 12 जो उनके द्वादश बाल सखा हैं, गोप सखा, उनमें से ये हैं श्रीदामा। तो श्रीदामा गोवर्धन के कंदराओं में गुफा में योग सिद्धि के द्वारा अपने अदृश्य रूप में वो वहाँ निवास कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे कि कैसे कब भगवान कृष्ण बलाई कृष्ण कन्हाई बलाई ये सब मुझे छोड़ के चले गए इस गुफा में और मैं यहाँ हूँ, इस तरह से वो प्रतीक्षा कर रहे थे। आप सब जानते हैं द्वापर युग के लोग बहुत बड़े बड़े होते हैं, है ना, हम जो हैं जितने हाइट हैं द्वापर युग के डबल होते हैं। तो कहते हैं कि अपने हाथ से कलयुग के लोग 3.5 हाथ के होते हैं, अपने हाथ से नाप के देख सकते हैं बाद में। द्वापर युग के लोग उससे डबल होते हैं, कितने 7 हाथ के। तो श्रीदाम जो थे श्रीदामा वो इतने लंबे थे। तो इन्होंने जो पुकारा तो वो फिर प्रकट हुए गोवर्धन के गुफाओं से कंदराओं से। तो फिर इन्होंने कहा कि तुम मुझे पहचानते हो, नित्यानंद प्रभु ने कहा कि तो कौन है आप, कौन है और इतने बौने क्यों दिख रहे हैं इतने छोटे क्यों, द्वापर युग के तो बड़े बड़े होते हैं लंबे। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा हम आपके सखा हैं बलाई बलराम। तो उनको विश्वास नहीं हुआ, उन्होंने कहा कि बलराम बलाई और ऐसे कैसे हो सकता है और इतने छोटे, हमारे बलाई तो बड़ा चमकते हैं, बड़े सुंदर दिखते हैं, गोरे गोरे से दिखते हैं, कितने सुंदर नीलांबर वस्त्र पहने, ऐसे बहुत वर्णन किए, आप तो ऐसे नहीं दिख रहे हो, बताओ सही में आप कौन है। तो फिर नित्यानंद प्रभु ने कहा कि अरे मैं सही कह रहा हूँ, मैं तुम्हारा सखा बलाई हूँ। तो श्रीदामा ने कहा कि अगर सही में तुम मेरे सखा बलाई हो तो हम परीक्षा करते हैं, मैं गोवर्धन परिक्रमा करता हूँ और तुम मुझे पकड़ना, अगर सही में तुम मेरे पीछे पीछे आके मुझे पकड़ लोगे, मतलब 7 फुट का व्यक्ति अगर गोवर्धन परिक्रमा करेगा कितना टाइम लगेगा एक स्टेप यहाँ तो दूसरा स्टेप कहाँ होगा, और वो भी भाग के। तो वो परीक्षा करना चाहते, तो वो चलने भाग गए, श्रीदामा आगे निकले, ऐसे गोवर्धन परिक्रमा वो कर रहे थे। तो ये अपने जो बलराम जो नित्यानंद प्रभु हैं वो तो है बलराम, वो तुरंत उनके पीछे पीछे ही चल रहे थे, बिल्कुल पीछे पीछे ही। और श्रीदाम देख रहे हैं कि ये तो बिल्कुल मेरे पीछे ही है, और ऐसे परिक्रमा करने के आने के बाद देखे मुँह मोड़ के देखे तो बलराम जी नित्यानंद प्रभु बिल्कुल बगल में ही है, पकड़ लिए उनको। तब उनको विश्वास हो गया कि ये मेरे सखा जो हैं बलाई बलराम। फिर बलराम नित्यानंद प्रभु को पहचानने के बाद श्रीदामा ने कहा कि बताइए आप अभी इसी समय क्या प्रयोजन है। तो बलराम नित्यानंद प्रभु कहा कि आपके प्रिय सखा कृष्ण का अवतार हुआ है, कृष्ण तो मुझे छोड़ के चले गए थे 5000 वर्ष पहले, फिर कब अवतरित, कलयुग में इसी युग में वो भी नदिया नवदीप में अवतरित हुए हैं, वो संदेश भेजे हैं, मैं आपको लेने आया हूँ, आप चलिए हमारे साथ। तो श्रीदामा ने कहा कि नहीं मुझे गोवर्धन छोड़ के नहीं जाना है, मैं यहाँ अपने सखा कृष्ण को यहाँ स्मरण, गोवर्धन लीला मुझे स्मरण आता है, गिरिराज गोवर्धन मुझे इतना प्रिय है, मैं यहाँ से नहीं जा सकता। तो उन्होंने फिर भी बहुत बोले कि देखिए आपके ही सखा जो आप जिनको आपके जो सखा कृष्ण है वही गौर है नवदीप में, इसलिए चलिए। फिर भी वो मना किए, बहुत कहने के बाद नित्यानंद प्रभु बहुत उनको आग्रह किए। तो वर्णन है कि एक रूप में वो प्रकट हो गए, एक रूप में तो वो थे ही, एक दूसरे रूप में वो प्रकट हो गए और उनका नाम हो गया अभिराम, जिनका आज दिवस है, उनको अभिराम गोपाल भी कहते हैं, अभिराम गोपाल ठाकुर भी कहते हैं, या रामदास भी कहते हैं, रामदास अभिराम दास कितने कई नाम हैं। तो साक्षात वो श्रीदामा हैं जो प्रमुख 12 सखाओं में से एक हैं। तो वो भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीला में आके सम्मिलित हुए। तो आगे ऐसे कई लीलाएं हैं, जैसे एक दो लीलाएं ऐसे है, अभिराम जब भगवान चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के पार्षद बने, वो तो नित्यानंद प्रभु के प्रमुख पार्षदों में से गदाधर दास, मिनकेतन रामदास, ये एक हैं, अभिराम दास है, बहुत साक्षात भगवान के पार्षद है, तो कहना ही क्या है, शक्ति में और भक्ति में दोनों में सर्वश्रेष्ठ हैं। तो कहते हैं कि इनके पास एक अद्भुत शक्ति है कि जिनको वो प्रणाम करेंगे, अगर वो सही में शालिग्राम नहीं होगा तो टूट जाएगा वो विग्रह भी, अगर वास्तव में असली विग्रह माने प्राण प्रतिष्ठित या भगवान का स्वयं प्रकाश नहीं हो तो विग्रह या कोई जो शालिग्राम अगर वो असली नहीं है तो वो विस्फोट हो जाता है, लोग इनसे डरते थे। ये तो ठीक है कम से कम, लेकिन जिन जिन भक्त को ये प्रणाम कर दें उसका हरि बोल हो जाएगा। अगर ये किसी को प्रणाम किए वो सही में एक शुद्ध भक्त नहीं हो या भगवत पार्षद नहीं हो तो परीक्षा हो जाती है, उसके बाद तो फिर राम नाम, तो कितना भय लगता है ना, कोई भी ये किस दिशा में अगर ये चले गए तो सब भागेंगे, कहीं प्रणाम ना कर दे हमारा तो असली पोल पोटी खुल जाएगी, बचेंगे नहीं, खोलेगी कहाँ से, बचेंगे ही नहीं। इस तरह से बहुत प्रतिभावान, बहुत शक्तिमान थे, तो प्रणना था कि नित्यानंद प्रभु के पास पहुँचे। और सबसे पहला संतान जब नित्यानंद प्रभु को हुआ, नित्यानंद प्रभु का जानवा और वसुधा दो पत्नी थे, तो अभिराम ठाकुर गए और तुरंत दंडवत प्रणाम कर दिए, और इतना जो खुशियां मना रहे थे नित्यानंद प्रभु के घर में, आंगन भयो जय हो लाला की, वो सब रोने लगे, हरि बोल हो गए, हम इतना सब दुखी हो गए, रोने लगे, बच्चा मर गया। कुछ कहते हैं, कुछ ऐसे उल्लेख है कि ऐसे एक नहीं दो नहीं 7 संतान पधार गए। जब भी बच्चा होता था सब लोग त्योहार मनाते थे तो बिल्कुल बराबर टाइम पे ही पहुंच जाते थे अभिराम ठाकुर, और जैसे ही प्रणाम करते थे, जो भगवत भक्त नहीं है, पार्षद नहीं है, थोड़ा सा भी अगर इधर उधर है तो हो गया कल्याण। लेकिन फिर एक कन्या हुआ जिनका नाम हुआ गंगा देवी, वसुधा से गंगा देवी। तो वो कन्या जब जन्म हुआ उस समय भी अभिराम ठाकुर आए और उनको प्रणाम किए, तो वो कहते हैं ना जसी आए तसी, यथारूप एज इट इज रह गए, वो उनका कुछ भी अनिष्ट नहीं हुआ। तब अभिराम जी को लगा कि ये तो कोई बहुत ही स्पेशल सोल है, दिव्य आत्मा है, उनको कुछ नहीं हुआ, और वो फिर रहे। फिर उसके बाद बीरचंद्र गोस्वामी जो नित्यानंद प्रभु के पुत्र है ना, वो भी उनके जन्मोत्सव में महात्मा पधारे थे, फिर सब लोग भयभीत हो गए, अरे एक तो बेटा हुआ है अभी फिर से आ गए, कहीं इनको छुपा के रखो कहीं। तो जब उन्होंने प्रणाम किया, वीरचंद्र गोस्वामी जो है वीरभद्र अष्टकम लिखे हैं, तो वो सुरक्षित रहे, उनको भी कुछ हानि नहीं हुआ। तो इस प्रकार से उनके पास एक अद्भुत शक्ति था। और फिर कानाखोल कृष्ण नगर स्थान है जहाँ उनको गोपीनाथ जी मिले थे, गोपीनाथ जो उन्होंने उनके सपने में आए थे वो विग्रह, मैं यहाँ हूँ इस जमीन के नीचे और खुदाई कीजिए उसके बाद मुझे प्राप्त कीजिए, ऐसा करके उनको सपनादेश हुआ। तो आप लोग जो मायापुर गए हैं तो कृष्ण नगर तो देखे ही होंगे, पास में ही है, थोड़ी दूर में कृष्ण नगर वो टाउन है। तो मैं तो इस एग्जैक्ट स्थान को देखा नहीं हूँ, लेकिन जो लोग गए हों तो देखे होंगे कि कहते हैं कि अभिराम जी का श्रीपाठ वहाँ है, कि जब उन्होंने खुदाई किया सब गांव वालों को लेके सबको लेके, तो सही में एक सुंदर विग्रह प्रकट हुआ और वही गोपीनाथ जी को वो पूजा करते हैं, आज भी पूजा करते हैं। तो उस स्थान का नाम है कानाखोल कृष्ण नगर, तो वहाँ से वो प्रकट हुए थे। और जो खुदाई के बाद जो कुंड बन गया राम कुंड कहते हैं, उनका नाम था रामदास, ऐसे वो अद्भुत महात्मा थे। और सुप्रसिद्ध है उनके पास एक फेमस चाबुक था विप, वो चाबुक से किसको अगर प्रहार कर देंगे तो और श्रद्धा से लेके प्रेम तक एक डायरेक्टली पहुंच जाएगा, कोई पीडीसी एबीसी न्यू भक्त ट्रेनिंग की जरूरत नहीं। हमारे पुणे में न्यू भक्त ट्रेनिंग को कहते हैं पीडीसी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स, कुछ जरूरत नहीं। एक चाबुक अगर लगा तो फिर सीधा एकदम हरे कृष्णा कृष्णा, हरे राम बिल्कुल प्रेम के स्तर पे पहुंच जाएगा कोई भी व्यक्ति। ये विशेष चाबुक था। श्रीनिवास आचार्य जब छोटे से लड़के थे, एक बार घूमते घामते वो आए तो श्रीनिवास आचार्य को देख के अभिराम ठाकुर ने वो चाबुक लगाया। एक दो तीन, तीन लगाते ही वो प्रेम के सर्वोच्च स्तर पे पहुंच गए। फिर वो उनकी पत्नी मालिनी देवी ने हाथ रोक दिया कि ठाकुर और मत मारो, कहीं हरे कृष्णा ना हो जाए। मतलब पूरे उनके बहुत लीला करनी है। तब तक तो वो कृष्ण के प्रेम के सर्वोच्च स्तर पे पहुंच गए। तो ये उनका विशेषता था। लगता है सुनने के बाद ऐसा लगता है ना, इतना हम हरे कृष्ण करते हैं फिर भी पता नहीं भक्त कब प्रेम के स्तर पर। एक चाबू कोई लगा देता तो सीधा पहुंच जाते, फिर इतना कष्ट गर्मी में कितना तकलीफ होता है। इतना जो भी है इतना करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन वो उस समय तो महाप्रभु के गौरांगेर संगीगण नित्य सिद्ध करी मने। तो ऐसे अनेक लीलाएं जो अभिराम ठाकुर ने किया है। तो हम आज श्रीमद् भागवतम से श्लोक लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, जिसमें भगवान नाम का बहुत सुंदर विशद वर्णन है। तो आप लोग पाठ कीजिए, आवृत्ति कीजिए। नैकांतिकं तद्धिकृतेऽपि निष्कृते मनः पुनर्धावति चेदसत्पथे तत्कर्म निर्हारम भिप्सताम हरे गुणानुवादः खलु सत्वभावनः। हम अनुवाद तात्पर्य को पढ़ते हैं, सब बोलिए। न नहीं, ऐकांतिकम पूरी तरह स्वच्छ किया हुआ, तत् हृदय ही क्योंकि कृते अत्यंत सुंदर ढंग से संपन्न, अपि यद्यपि निष्कृते प्रायश्चित मनः मन पुनः फिर धावति दौड़ता है चेत यदि असत पथे भौतिक कार्यों के मार्ग पर, तत् इसलिए कर्म निर्हारम भौतिक कर्मों के सकाम फलों का अंत, अभिप्सताम उनके लिए जो गंभीरता पूर्वक चाहते हैं, हरे हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का गुण अनुवाद महिमा का निरंतर कीर्तन खलु निस्संदेह सत्वभावना वास्तव में जीवन को शुद्ध करने वाला। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। धार्मिक शास्त्रों में संस्तुत किए गए प्रायश्चित के कर्म कांड हृदय को पूरी तरह स्वच्छ बनाने में अपर्याप्त होते हैं, क्योंकि प्रायश्चित के बाद मनुष्य का मन पुनः भौतिक कर्मों की ओर दौड़ता है। फलस्वरूप जो व्यक्ति भौतिक कार्यों के सकाम फलों से मुक्ति चाहता है उसके लिए हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन या भगवान के नाम यश तथा लीलाओं की महिमा का गायन प्रायश्चित की सबसे पूर्ण विधि के रूप में संस्तुत किया जाता है, क्योंकि ऐसे कीर्तन से मनुष्य के हृदय में संचित धूल स्वच्छ हो जाती है। तात्पर्य इस श्लोक के कथन की पुष्टि पहले ही श्रीमद् भागवतम 1:2:17 में हो चुकी है। सुनताम सकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थो ही अभद्राणी विधुनोति सुहृत्सताम भगवान कृष्ण जो कि प्रत्येक के हृदय में परमात्मा हैं और सच्चे भक्त के उपकारी हैं, उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छा को धो डालते हैं। जो उनके संदेशों का आस्वादन करता है, जो ठीक से सुने जाने तथा कीर्तन किए जाने पर स्वयं में शुभ गुणों से अलंकृत पवित्र हैं, ये तो परम भगवान की विशेष कृपा होती है कि ज्यों ही वे यह जान जाते हैं कि कोई उनके नाम यश तथा गुणों का महिमा गान कर रहा है, तो वे स्वयं उसके हृदय की धूल को हटाने में सहायता करते हैं। इसलिए मात्र ऐसे गुणानुवाद से मनुष्य न केवल शुद्ध बनता है अपितु पुण्य कर्मों का फल भी प्राप्त करता है। पुण्य श्रवण कीर्तन भक्ति का द्योतक है। यदि कोई भगवान के नाम, लीलाओं या गुणों को न भी समझता हो तो वह मात्र उनके श्रवण या कीर्तन से शुद्ध हो जाता है। ऐसी शुद्धि सत्व भावना कहलाती है। मनुष्य का मुख्य उद्देश्य अपने जीवन को शुद्ध बनाना तथा मुक्ति प्राप्त करना होना चाहिए। जब तक मनुष्य का भौतिक शरीर रहता है यह वह अशुद्ध समझा जाता है। ऐसी अशुद्ध भौतिक दशा में मनुष्य वास्तविक आनंदमय जीवन का भोग नहीं कर सकता, यद्यपि हर कोई उसके खोज में है। इसलिए श्रीमद् भागवत 5:5:1 में कहा गया है, तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्ध्येत। मनुष्य को अपने जीवन को शुद्ध करने हेतु तपस्या करनी चाहिए ताकि वह आध्यात्मिक पद तक आ सके। भगवान के नाम यश तथा गुणों के कीर्तन तथा गुणानुवाद की तपस्या अत्यंत सरल शुद्धकारी विधि है जिससे हर एक सुखी बन सकता है। अतः हर व्यक्ति को जो अपने हृदय को स्वच्छ बनाना चाहता है यह विधि ग्रहण करनी चाहिए। अन्य विधियां तथा कर्म, ज्ञान तथा योग हृदय को पूरी तरह से स्वच्छ नहीं बना सकती। तो ये जो आखिरी पंक्ति है, लाइन है, मैंने इसलिए दो बार पढ़ा कि ये प्रमुख विषय है यहाँ। कि श्रील प्रभुपाद जी का एक छोटी सी स्मॉल बुक है, उसका नाम है कृष्ण भावनामृत एक अनुपम भेंट। याद आ रहा है, कृष्ण कॉन्शियसनेस द मैचलेस गिफ्ट, याद आ रहा है छोटी सी पुस्तक। अगर वो पुस्तक को आपने पढ़ा हो तो उसकी शुरुआत में, नहीं पढ़े तो जरूर पढ़िए, तो उसके शुरुआत में प्रभुपाद इसका वर्णन करते हैं कि कैसे कर्म से, ज्ञान से हमारा जो चित्त पूर्णतया शुद्धि नहीं होती है। और इस छठे स्कंद जो हम अभी पढ़ रहे हैं उसके शुरुआत में जो, या पंचम स्कंद के अंत में नरकों का वर्णन है, उसके बाद महाराज परीक्षित जब पूछते हैं बाप रे इतने भयानक नरक है। एक भक्त तो कल मुझे ये बता रहे थे कि अगर कोई जानबूझ के मच्छरों को मारता है तो उसके लिए भी एक नरक है, और वो भी भगवान के धाम में तो बिल्कुल नहीं मानना चाहिए, चाहे तो मच्छरदान लगा के सो जाओ। लेकिन कुछ होते हैं ना जो बहुत, कभी भी अब भगवान के धाम में, वृंदावन नवद्वीप मायापुर धाम में मच्छरों को नहीं मानना चाहिए, उसके लिए और व्यवस्था करें। तो कहते हैं उसके लिए गरुड़ पुराण में लिखा है जो मच्छरों को, कीट पतंगों को, ऐसे छोटे कीड़ों मकड़ों को मारता है उसके लिए भी एक नरक है, साधु सावधान। तो कहने का अर्थ है परीक्षित महाराज वो भाई एक भय से, एक आशंका से कैसे उद्धार होगा इन सबका। ये प्रसंग शुरू होता है छठा स्कंद, ऐसे से यहीं से ही शुरू होता है। फिर वो कहते हैं कि जैसे मानो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं प्रायश्चित करना है, तो परीक्षित महाराज सुविधा नकार देते हैं, प्रायश्चित से ये संभव नहीं कि ये कर्म करो उसके बदले में ये प्रायश्चित कर लो। वेद में कई ऐसे पूजा पाठ कर्मकांड विधि लिखा है, बहुत प्रायश्चित है करते हैं। बचपन में हम देखे थे, एक बार जब स्कूल में पढ़ते थे हमारे घर के सामने एक भिक्षा मांगने के लिए एक 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 योगी जैसा कोई आया और उसके गले में ऐसे पट्टा बांधा था, तो हम तो समझ नहीं पाए क्या है। माता जी को पूछा तो माँ ने बताया उसने गाय का वध किया है, जो गाय का वध किया है उसका कुछ प्रायश्चित है, चाहे जाने अनजाने में कुछ भी हो। बड़ा अद्भुत दिख रहा था वो व्यक्ति, एकदम क्या क्या लगाया था शरीर में, और जो पुआल होता है धान को काटने के बाद जो बचता है ना, उसका एक बनाया था ऐसे रस्सी जैसा कुछ, और गले में जैसे हम माला टांगते हैं तो वो ऐसे टांगा था, और भिक्षा मांग रहा था। तो ये बहुत कठिन कठिन प्रायश्चित है, ये पाप करने से ये प्रायश्चित, वो कई सारे हैं। तो परीक्षित महाराज कहते हैं ये प्रायश्चित से इतना ये सेटिस्फाइड आंसर नहीं है, तो क्या करना है। फिर छठा स्कंद का शुरुआत ऐसे ही होता है कि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भक्ति भगवान नाम संकीर्तन कथा कीर्तन से जो शुद्धि होता है वो कर्म से, वो ज्ञान से, वो भले थोड़े प्रायश्चित। इस श्लोक के टीका में विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं 12 वर्ष तक, अभी जो हमने श्लोक पढ़े, इस श्लोक के टीका में कहते हैं कि 12 साल तक कुछ प्रायश्चित करना होता है किसी पाप कार्य का। लेकिन वो प्रायश्चित तो कैसे कैसे हो जाता है, लेकिन प्रवृत्ति रहती है जिसके वजह से वो व्यक्ति फिर से पाप करने की उद्यत होता है, वो पूर्णतया समूल नष्ट नहीं होता है। तो ये है कमी, कर्म हमेशा सदोष रहता है, कोई भी कर्म है ना उसमें दोष थोड़ा बहुत तो रहता ही है, और ज्ञान में वैसे ही है, पूर्णतया शुद्ध नहीं होते हैं। प्रायश्चित कुछ तरह किसी तरह हो जाता है, लेकिन कभी ना कभी वो प्रवृत्ति फिर से, कई उदाहरण है शास्त्र में कि कैसे कर्म और ज्ञान में व्यक्ति पूर्णतया शुद्ध नहीं होता है। अगर हमें पूरा जड़ से उसको उखाड़ के निकालना है, बीज को अंकुरित होने नहीं देना है, तो फिर एक ही जो कहते हैं 100 सोनार की एक लोहार की, यही वो पावरफुल प्रोसेस है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा इसका सुंदर उदाहरण भक्ति रसामु सिंधु में दिया है। थोड़ा सा हम उनसे वहां से थोड़ा चर्चा करेंगे कि कैसे भक्ति जो है सर्वशक्तिमान है, और यहाँ जो प्रभुपाद जी यहाँ व्याख्या किए हैं। सबसे पहली बात है, वैसे तो बहुत लंबा टॉपिक है, मैं संक्षेप में हम वर्णन करेंगे कि भक्ति के 6 लक्षण रूप गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं। सबसे पहला है क्लेशाग्नि, जो लोग भक्ति शास्त्र किए हैं या पढ़ रहे हैं या पढ़ने वाले हैं उनको सब ये सब पढ़े होंगे। क्लेशाग्नि भक्ति इतना प्रभावशाली है, शक्तिमान है कि हमारे जितने सब क्लेश हैं कष्ट हैं इस सब को दूर कर देता है, और केवल वैदी भक्ति साधना भक्ति के समय ही, साधना भक्ति में जो वैदी भक्ति है उसमें ही ये गुण प्रकट हो जाता है। क्लेशाग्नि सारे पाप ताप कष्ट सब दूर हो जाते हैं। तो उसमें वर्णन करते समय कहते हैं पाप 2 प्रकार के होते हैं। ये सब थोड़ा अभी टेक्निकल शब्द है, लेकिन बहुत सारे कई बार सुने हैं आप, तो आपको रिमाइंड हो जाएगा, नोट भी कर सकते हैं जिनको चाहिए। तो भगवान रूप गोस्वामी पाद श्लोक को उद्धृत करके कहते हैं अप्रारब्धम फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेणैव प्रलीयन्ते विष्णु भक्ति रतात्मना। भगवान विष्णु की भक्ति करने से, जो श्रवणम कीर्तनम आदि भक्ति करने से अप्रारब्ध एक फलम पापम कूटम कूट 2 बीज 3 प्रारब्ध 4 ये 4 समूल नष्ट हो जाते हैं। अब थोड़ा थोड़ा सुनिए क्या है ये चीज, क्या है कौन सा ये टर्म है। सबसे पहले कहते हैं अप्रारब्ध, तो इसको रूप गोस्वामी पाद कहते हैं पाप जो है जिससे हम कष्ट भोगते हैं वो 2 प्रकार के हैं, अप्रारब्ध और प्रारब्ध। अप्रारब्ध वो है जो हमारे अनादि काल से, इसको जीव गोस्वामी पाद कहते हैं अनादि सिद्धम अनंतम चेति, अनादि काल से जब से हम इस संसार में तब से जो कर्म का बंधन हमें हमारा लगा है, कर्म के बंधन में हम फंसे हैं, किसी एक जन्म की नहीं। किसको पूछा जाए कब से है, क्या उत्तर है, 1947 से नहीं अनादि, कोई कहेगा कि हम इतने साल में, अब से अभी बस जन्म हुए या ये साल से फलाने डेट से, ना अनादि, अनादि का अर्थ ही आप समझ जाइए जिसका कोई आदि ही नहीं है, अनादि है। और कितना है कहते हैं अनंत, कब से है तो कहते हैं अनादि। ये कर्म का बंधन कब से लगा हुआ है? कहते हैं अनादि, जब से हम इस संसार से हैं तब से ही अनादि कर्म है। और एक किलो, दो किलो, पांच किलो कितना है? अनंत। जिस जिस जन्म में, जिस जिस शरीर में, जो भी हम लोगों ने जो शरीर बदला है वो अनंत है। कितना बड़ा कर्म का गठरी है बताओ, कब नष्ट होगा? और यही तो हम भोग रहे हैं, ये अप्रारब्ध है। और अप्रारब्ध से थोड़ा सा हिस्सा जब प्रोसेस में आने लगता है उसको कहते हैं कूट। फिर जब वो वासना में परिणत हो जाता है उसको कहते हैं बीज। और फिर जब करने लगते हैं फिर हो गया प्रारब्ध, फिर उसका फल सामने आ जाता है। जब ये VIHE में पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज क्लास दे रहे थे, इसका रिकॉर्डिंग में सुन रहा था, तो उसमें बहुत सुंदर उदाहरण देके वो समझाते हैं इस चारों टर्म को। कि मान लीजिए कहीं एक अनाज का गठरी है, अनाज का गोदाम है, हो गया अप्रारब्ध। और उस अनाज के गोदाम से कई बोरी अनाज हम ले आए सेलिंग करने के, बेचने के लिए हो या घर में रखने के लिए, कुछ भी कार्य के लिए हो। मूल अनाज का गोदाम जो है बहुत भरा हुआ है, उसमें से थोड़ा सा अनाज जो हम बोरा भर के ले आए कहीं, वो हो गया कूट। और मान लीजिए बारिश का मौसम है, जमीन गीला है, और उस अनाज के बोरे में से कुछ अनाज हमने अगर जमीन पे डाल दिया वो हो गया बीज। फिर गीला जमीन है और बारिश का मौसम है, बारिश के पानी से वो धीरे धीरे पौधा अंकुरित होता है कि नहीं? देखें ना, बीज से पौधा अंकुरित होता है, जैसे ही वो अंकुरित होता है फिर पत्र पुष्प फल सब प्रकट होने लगता, वो हो गया प्रारब्ध। आसानी से समझ में आता है ना? तो ये इस प्रकार से हमारा कर्म का जो है हिसाब है, अनादि अनंत काल से हमने क्या क्या पता नहीं कर्म किए हैं, वो अभी फल देना बाकी है। वो हमारा कोटा सब है, बहुत भरा हुआ है गोदाम में, सबका कोटा अलग अलग है, कोई किसको शेयर नहीं कर सकता। जितने भी हम बैठे हैं सबका कोटा अलग है, कितना किसका कितना कोटा है, सब सबका अपना अपना हिसाब है। वो हो गया अप्रारब्ध। और धीरे धीरे वो एक प्रोसेस जो जिसको इंग्लिश में कहते हैं, जो लोग भक्तिरसामृत सिंधु पढ़ते हैं जन, प्रोक्लिविटी या प्रोपेंसिटी, अब आया समझ में? प्रोक्लिविटी कहेंगे या प्रोपेंसिटी कहेंगे, वो कूट होता है। एक अंदर एक वो भोग करने की इच्छा रहती है, भाई किसी रूप को देख के हम दीवाना हो जाते हैं, किसी 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 अच्छे भोजन की पदार्थ वस्तु को, कोई भी हो जिसका जो फेवरेट आइटम है, उसको देख के ही मुंह से पानी टपकता है। तो ये जो ये कहां से आता है? ये वासना अंदर है भाई। एक एक दो व्यक्ति हैं, दोनों के सामने रसगुल्ला आया, एक को तो कुछ नहीं लग रहा है, पत्थर के समान देख रहा है, और दूसरा को तो पानी टपक रहा है। इसका मतलब एक में वो वासना नहीं है, संस्कार नहीं है, और एक में पहले से संस्कार है, इसलिए देखते ही मुंह गीला हो जाता है, राधे राधे। तो इसको कहते हैं जो कि ना प्रोक्लिविटी या प्रोपेंसिटी, जो वासना। और फिर वो जब एक बार भोग कर लेता है वो संस्कार बैठ जाता है, वो बीज हो जाता है। एक बार भोग करने के बाद फिर वो प्रारब्ध में परिणत हो जाता है। हमें तो उसके बाद तो हमारे हाथ में और नहीं है, भोगना ही पड़ेगा। यही तो है, क्या है प्रारब्ध? सिंपल बात है, जो हम आपको देख रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं ना, यही प्रारब्ध है। ये शरीर, इस शरीर के साथ जो भी सुख दुख जो भी लगा हुआ है, बीमारी, जो भी कोर्ट कचहरी जाते हैं, बिजनेस में मुनाफा लॉस जो भी होता है, शरीर में जो भी बीमारी है, ये सारा सारा जो है ये प्रारब्ध का ही फल है। जितने भी सब कष्ट इस शरीर में आते हैं, आते हैं कि नहीं आते? कौन यहाँ सुखी है, हाथ उठाओ। जितने भी शरीर के साथ हमें लगा है, जो भी दुख कष्ट क्लेश मान अपमान निंदा अपना लाभ हानि जो भी होता है इस शरीर के साथ, वो सब प्रारब्ध है। इसका मतलब वो फलोन्मुख हो गए। आप भी तो कोई चांस ही नहीं है, अभी तो भोगना ही पड़ेगा, ऐसा है। लेकिन भक्ति, अभी जो आपने ऐसा सुना, भक्ति क्या है, बहुत पावरफुल ले सकते हैं जो भगवान नाम संकीर्तन। यहां जैसे इस श्लोक के अनुवाद में कहते हैं, भगवान का नाम कोई जप करता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, और कोई भागवत पढ़ता है, मुख्यतः श्रवण कीर्तन, भागवत सुनता है, भागवत पढ़ते हैं। भक्तों बहुत ध्यान से सुने, हमने अपने गुरु महाराज से सुना है, जो भगवान का नाम जप करता है और जो भागवत के श्लोकों को पाठ पारायण करता है, दोनों एक ही समान है। क्यों भागवत की इतनी महिमा है, महाराज श्री कहते हैं क्योंकि ये नामों नाम से परिपूर्ण है, एक एक श्लोक में भगवान नाम है, दूसरा गुणों से संश्लिष्ट है, इसलिए इसकी इतनी महिमा है। कलयुग में और कोई बाकी सब पीछे हैं, अगर कोई भगवान का नाम सिंसियरली प्रामाणिक रूप से गंभीरता से जप करता है और श्रीमद् भागवतों का पाठ पारायण करता है, तो वो जो श्लोक उच्चारण करेगा उस श्लोक में भगवान का नाम और रूप और गुण सब आएगा। इसलिए बाकी अष्टादश पुराण जो भी लिखे हैं व्यासदेव ने, विष्णु पुराण, पद्म पुराण, ये सब लिखे हैं, वाई भागवत में सो सुपीरियर, इतना सर्वश्रेष्ठ क्यों है, इसमें भगवान नाम और गुणों से संश्लिष्ट है और पंचम पुरुषार्थ देने वाला है, भगवत प्रेम देने वाला है, ये इसलिए इतना सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए जो भगवान नाम का कीर्तन करता है, कथा का कीर्तन करता है, गुण लीला का वर्णन करता है, और जब भगवान नाम का जप, ये सब चित्त को शुद्ध करने के लिए, हमारे जितने भी सब अभी बताया वो अप्रारब्ध ये वो कूट बीज सबको ध्वंस करके नाश कर देता है। लेकिन एक बात हमें ध्यान देना है, सेकंड लाइन में कहते हैं क्रमेणैव प्रलीयते विष्णु भक्ति रतात्मना, कैसे ध्वंस होगा, क्रम से। क्रम से माने क्या है, कोई कहेगा ना इतना हमारा कर्म का गठरी है, कैसे ध्वंस होगा, कैसे नाश होगा ये, तो कहते हैं जैसे हम अभी अभी ये कौन सा प्रसंग चल रहा है, अजामिल ना, अजामिल का ही उदाहरण रूप गोस्वामी पाद और जीव गोस्वामी पाद व्याख्या करते हैं। अजामिल ने सबसे पहले जब अपने पुत्र का नाम बोला नारायण, नारायण, बस चार अक्षर भगवान का नाम लिया, वो चैंटिंग करने के लिए नहीं ले रहा था, उसको ये नहीं था कि उसको प्रेसिडेंट ने बोला था चैंटिंग करो, वो तो डर के मारे, पहली बात जब नारायण जब जन्म हुआ ना उसका बेटा, जो भी जिस किसी वजह से उसका बेटे का नाम नारायण रखा था, लेकिन जब नारायण जब पहली बार छोटा सा बच्चा था और इन्होंने पुकारा नारायण, माँ के गोद से हमारी गोद में आओ, किसी भी उद्देश्य से पुकार, सबसे पहली बार जब नारायण, इतने में ही भगवान नाम का इतने शक्ति है, जो यहाँ कहा गया है ना अनादि और अनंत कर्म, जैसे लागो कि लगा कि बम ब्लास्ट होके सारे कर्म की गठरी ध्वंस हो गई, ये है भगवान नाम का प्रभाव है। सबसे पहली बार जब कोई बोलता है हरे कृष्णा, गया सब सारे कर्म अप्रारब्ध जितने भी थे सब नाश ध्वंस हो गए, ये भगवान नाम का शक्ति है, इसलिए भागवत प्रमाण है। तो ये कहते हैं अप्रारब्ध कर्म को नाश करने के लिए भगवान नाम, एक नाम ही सफिशियंट है, पर्याप्त है। तो कोई पूछेगा कि कई लोग तो देखते हैं कि हरे कृष्ण भी बोलते हैं, उधर जाके चाय पीते हैं, बीड़ी फूंकते हैं और सिनेमा, कई लोग ऐसे होते हैं ना, हाँ सब कुछ कहते हैं, राधे राधे भी बोलते हैं, बाकी सब भी करते हैं, उनका क्या होगा ऐसे लोग। अजामिल के प्रसंग में भी हम देखते हैं ना, अजामिल सबसे पहली बार जब हरे कृष्ण बोला, उसके बाद ऐसा नहीं कि वो सोला माला जप करने लगा, उसके बाद भी वो पाप कर्म करता था, वो वेश्या के साथ था और क्या क्या काम करता, तो इस ये कैसे होता है, प्रश्न समझ में आ रहा है। तो अजामिल ने जब सबसे पहली बार हरे कृष्ण बोला, मतलब नारायण बोला, तो उसके जितने अप्रारब्ध कर्म थे सब ध्वंस हो गए। लेकिन उसके बाद जब जब वो नारायण बोलता था अपने बेटे को, ये नारायण आओ, नारायण खाओ, नारायण जाओ, या बाहर के लोग भी कहते हैं, हरे कृष्ण भी कहते हैं, तो ये सब जो कह रहे हैं, जाने अनजाने में जो भी बोलते हैं, वो धीरे 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 भक्ति की सुकृति बनता है। कर्म तो नष्ट हो गया पहली ही बार, लेकिन फिर वो सुकृति बनता है, सुकृति समझते हैं, सुकृति पायस क्रेडिट, और फिर वो धीरे धीरे भक्ति की सुकृति बनता है, और उसके बाद फिर वो भक्ति में रत हो जाता है, लगने लगता है, उसका चित्त शुद्ध हो जाता है। लेकिन अजामिल के प्रसंग में कि वो अपराध नहीं किए थे, वो अपराध नहीं किए थे, पापी था, भले पापी था वो, लेकिन वो अपराध होके नाम नहीं ले रहे थे। वो ऐसे ही जैसे बाकी लोग, बाहर के लोग क्या जानते हैं अपराध, बाहर के लोग को पूछो बोलो 10 नाम अपराध क्या है, कोई नहीं बताया, वो जानते ही नहीं क्या होता है अपराध, क्या होता है। देखो ये सुंदर शब्द है पाप, प का अर्थ है परमेश्वर, और संधि विच्छेद कीजिए प प्लस अप, पाप अ मिलके आ हो जाता है, जो व्याकरण थोड़ा बहुत जानते हैं। तो प का अर्थ है परमेश्वर, अप का अर्थ है जो दूर कर दे अपराध, जैसे हम कहते हैं ना अप, जो परमेश्वर से दूर कर दे, हो गया क्या पाप। तो अजामिल वहां अपराध के कैटेगरी में नहीं है, वो पापी था, लेकिन नाम भी लेता था उधर अपना जो भी कर्म करता था, लेकिन जो पहली बार नाम लिया उस समय उसका अपराध अब नष्ट। तो कहने का अर्थ है कि जब कोई व्यक्ति पहली बार भगवान का नाम लेना शुरू करता है तो अप्रारब्ध नष्ट हो जाता है, और बचा कूट, बीज और प्रारब्ध, है ना, कहते हैं ना क्रम से नष्ट होता है, देखिए कैसे होता है। उसके बाद जब हम हरे कृष्ण बोलते हैं, भगवान नाम जप करते हैं, शुरू कर भागवत पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो कूट जो है, कूट मैंने क्या कहा, वो जो प्रोक्लिविटी, जो प्रोपेंसिटी है, जो संस्कार है, जो कई जन्मों से हमारे चित्त में है, जिसको देखते ही हमारा मन डिस्टर्ब हो जाता है, भोग प्रवृत्ति आता है, किसी गलत दृश्य को देखने की, कुछ खाने की, कुछ किसको स्पर्श करने की, ये कई जन्मों का किसका संस्कार है, जो कूट है वो अप्रारब्ध में ही मिलता है। तो अप्रारब्ध और कूट को, दोनों को एक साथ ले सकते हैं। जब हम भगवान का नाम जप करते हैं, भागवत पढ़ते हैं और सुनते हैं, तो अप्रारब्ध और कूट दोनों नष्ट हो जाता है। अब बच्चा बीज, बीज क्या है, वासना है, और बहुत डेंजर है वो, कहते हैं ना सीड, किसके चित्त में अगर बीज है, सीड है, तो वो बार बार वो उसके मन में कोई भी अगर ऐसा भोग वस्तु या अनुकूल परिस्थितियां आती है तो वो करने के लिए उद्यत हो जाता है, वो चाहता नहीं है। आपके मन में आता है ना, कई बार आपने अनुभव किया होगा, अरे मैं चाहता नहीं हूँ फिर भी क्यों ऐसे उद्यत हो जाता हूँ करने के लिए, गलत करने के लिए, गलत देखने के लिए, क्योंकि वो बीज अभी तक नष्ट नहीं हुआ है। सीड, सीड जो भोग करने की प्रवृत्ति है ना, वो बीज नष्ट नहीं हुआ है। तो क्रम से अप्रारब्ध, फिर कूट, फिर बीज, ये जैसे जैसे हम इंटेंसली और हमारे भक्ति को इंटेंसिफाई करते हैं, भगवान नाम जप करते हैं, भागवत सुनते हैं, पढ़ते हैं, भक्ति के जो भी नवदा भक्ति करते हैं, मुख्यतः श्रवण कीर्तनम इसमें करते हैं, तो धीरे धीरे बीज हरत्वम, बीज भी नष्ट हो जाता है। इसका प्रमाण यह है कि कई बार हम देखते हैं, साक्षात देखिए हमारे इस्कॉन संस्था में ही प्रभुपाद जी जब विदेश में गए थे, देखिए कैसे कैसे लोग थे, म्लेच, क्या क्या खाते पीते थे, आज सब शुद्ध बन गए, और शुद्ध भक्त होके इस्कॉन के लीडर्स, जीबीसी, सन्यासी, गुरु होके दूसरों को दीक्षा ले देंगे। देखिए, देख रहे ना भक्ति का कितना शक्ति है, इतना दृढ़ विश्वास होना चाहिए। कैसे किस दिशा, कैसे दशा में थे, किस स्थिति में थे, आज देखो इतने शुद्ध भक्त बन गए हैं। तो बीज हरत्वम, ये मैं बस टच कर रहा हूँ, इसको भक्ति शास्त्री क्लास में कभी विस्तार से हम वर्णन करते हैं। तो ये बीज हरत्वम भी भक्ति के प्रभाव से धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, और जो 10 साल पहले हमें, जिसको देखने से हम डिस्टर्ब हो जाते थे, जब भक्ति करते करते हमारा बीज हरत्वम हो जाता है, उस भोग वस्तु सामने भी रहे हमें कुछ नहीं लगेगा, हमें परवाह नहीं होगा, हम उसे डिस्टर्ब नहीं होंगे। इसका मतलब है कि हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं, हमारा बीज हरत्वम हो रहा है। और विशेष करके भक्तों, ये निष्ठा के स्तर में होता है, नष्टी की भक्ति जब होता है ना, याद आ रहा है वो स्तर कहाँ आता है, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा। जब साधक निष्ठा के स्तर में आ जाता है ना, उसका बीज हरत्वम जो है हो जाता है धीरे धीरे। तो बीज हरत्वम हो गया, और बच्चा एक सबसे बड़ा खतरनाक है, वो है प्रारब्ध। कई लोग कहते हैं अरे प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ेगा, प्रारब्ध नष्ट नहीं, जो जैसा शरीर मिला है, काला गोरा लंबा चौड़ा स्त्री पुरुष, बुद्धि जैसा जितना बुद्धि मिला है, जो रोग मिला है शरीर के साथ, कितना भी दवाई लो, चाहे होड़ल से हो या पोड़ल से हो, कहीं से भी ट्रीटमेंट लो, फिर भी ठीक नहीं होता है। कई लोगों को है ना, कहाँ से कन्या कश्मीर से कन्याकुमारी तक सारे आयुर्वेद आचार्य से ट्रीटमेंट लेते हैं, फिर भी वही। तो जो प्रारब्ध जो हमारे शरीर के साथ है उसका क्या होता है, मेन क्वेश्चन तो यही है ना। तो रूप गोस्वामी पाद कहते हैं भक्ति का ऐसा प्रभाव है कि जो भगवान नाम जप करते हैं और भगवत भक्ति करते हैं, प्रारब्ध भी बोलिए नहीं होता है। डर गए ना, घबरा गए, कोई कहते आता होता है कि नहीं होता है बताइए क्या, अगर होता है तो फिर हमारा क्यों नहीं हो रहा है, हम इतना क्यों रो रहे हैं, इतना दुख मिल रहा है, प्रश्न होता है ना। जब प्रारब्ध अगर मान ले, आपने ही कहा ना होता है, अगर हो जाता है तो फिर इस शरीर में जो इतना दुख कष्ट मिल रहा है फिर वो कहां से आया। देखो भक्तों, एक न्याय देते हैं, एक सुंदर उदाहरण देते हैं कि कमल पत्र न्याय इसको कहते हैं कि 100-200 कमल के पंखुड़ी को आप ऐसे रखिए और सुई को ऐसे घुसाइए, प्रवेश कराइए, सुई को अगर छेद करेंगे तो धीरे 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 वो आर मैंने दूसरी ओर आर पार हो जाएगा। तो उदाहरण इसलिए देते हैं कि जैसे जैसे हम भक्ति करते हैं सबसे पहला जो पंखुड़ी है वो छेद होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर आप 100-200 कमल के पंखुड़िए हैं, पेटल्स हैं, और आप सुई में छेद कर रहे हैं, तो दो 100 पेटल है जो 100वां नंबर का पेटल्स है, पंखुड़ी है, और या 200 नंबर जितना भी है उसको पहुंचने के लिए थोड़ा टाइम लगता है कि नहीं लगता है, लगता है कि नहीं। ये उदाहरण देते हैं, इसलिए वो जो लास्ट पेटल है वो है प्रारब्ध, ठीक है। तो पहले अप्रारब्ध नष्ट होता है, फिर कूट, फिर बीज, और जो प्रारब्ध है जो हम इस शरीर में अभी भोग रहे हैं उसको समय लगता है। ये न्याय है, होता है, हाँ इतना हमें विश्वास रखना है होता है, लेकिन भक्ति भी इस तरह से होना चाहिए, भक्ति भी इतने तीव्र होना चाहिए कि आपका सुई जो है, भक्ति का सुई जो एकदम आर पार करके तीव्रता से और दूसरी ओर निकल जाए। तो इस तरह से धीरे धीरे होता है, और प्राय जो है कई बार इस शरीर में हम भोग लेते हैं, प्रारब्ध जो है ना इस शरीर को भोग लेते हैं, और भक्ति के प्रभाव से कई बड़े बड़े प्रारब्ध दुष्कर्म हमारा टल जाता है। अनुभव है, टलता है कि नहीं, बड़े बड़े दुर्घटना होने वाले वो हमें भोगना था लेकिन वो टल जाता है, छोटा हो जाता है, बहुत कम में हमें मिलता है, बड़ा कुछ होने वाला था कम में मिलता है। और दुख जो भोगते हैं उसके कई कारण है। बस एक हिंट दे देता हूं कि भक्ति करने से भी जो कुछ अनर्थ होते हैं, भक्ति उन्मुख भक्त क्या है वो अपराध उक्त तो, माधुर्य का तो मिनिमम अपराध उक्त तो, भक्ति उत्थ अनर्थ कहते हैं, भक्ति करने से भी कुछ सुख दुख मिलते हैं वो उसका आनुषांगिक फल है, वो मुख्य रिजल्ट नहीं, मुख्य फल नहीं है। भक्ति करने से भी कई मान सम्मान पूजा लाभ प्रतिष्ठा मिलता है, कई बार दुख क्लेश भी मिलता है, तो वो उसके वजह से हमें दुख मिलता है। एक या दूसरा कारण ये हो सकता है, जो अपराध कर बैठते हैं उसके वजह से हमें दुख मिलता है दो, और तीसरा कारण ये भगवान चाहते हैं, भगवान अगर किसी भक्त को चाहते हैं इसको थोड़ा सा दुख कष्ट दे देते हैं, ये वो कर्म हमारा नष्ट नहीं होता है जिस कर्म से हमारा भक्ति में प्रगति होगा। फिर से बोलूं, आप तो कहेंगे ना कि सारे कर्म तो नष्ट हो जाना चाहिए ना, लेकिन वो कर्म बचा रहता है जो कर्म से, जो दुख से हमें भक्ति में वो प्रगति करने के लिए सहायक होता है, और हम और तेजी से प्रगति करते हैं। वृत्रासुर के शरीर में जितना पावरफुल भक्ति की है, चित्र को तुम्हें इतना नहीं किए, ऐसे होता है कई बार कुछ भक्त को बड़ा भयानक बीमारी होता है, दुख क्लेश होता है, बड़े बड़े भक्तों को कई बार दुख कष्ट क्लेश बीमारी हो जाता है, उससे उनकी भक्ति और तीव्रता से बढ़ता है, फिर भगवान एक ही जन्म में उसका सारा कष्ट दुख दे के शुद्ध कर देते हैं। बड़े बड़े सन्यासी महाराजाओं को कैंसर हो जाता है ना। तो कुछ थोड़ा बहुत जो कर्म बचा रहता है इस शरीर में, वो दुख कष्ट क्लेश बीमारी ऐसे कुछ आके वो पूरा भगवान एक ही जीवन में, एक ही जन्म में उसका पूरा समाप्त करते हैं, और फिर वो भक्त भगवत धाम चला जाता है। इसलिए भक्ति बहुत शक्तिशाली है, दृढ़ विश्वास के साथ हमें करना है, और सारे कर्म क्रमेण परलीयन्ते विष्णु भक्ति रतात्मन अप्रारब्ध कूट बीज और प्रारब्ध धीरे धीरे सब नष्ट हो जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की। श्रील प्रभुपाद की। गौर प्रेमानंदे।